नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सरकार ने कहा वो वायु प्रदूषण के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा के लिए तैयार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा पिछले 10 वर्ष में देश में फसल उत्पादन में 44% की वृद्धि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के सेनापति जिले में 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का लातूर में निधन। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले में एक बस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत और 22 घायल। और दुबई में एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के सामने जीत के लिए 434 रन का लक्ष्य रखा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार लोकसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता ने कार्य सलाहकार समिति में ये मुद्दा उठाया था, इसलिए सरकार को इस पर विचार करना होगा और ये देखना होगा कि नियमों के अनुसार चर्चा कैसे आयोजित की जाए।
Made our position very clear.
सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया था कि सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार विपक्षी दलों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालने के लिए चर्चा को तैयार है।
Taking along the suggestions from all the members.
शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। श्री गांधी ने आशा व्यक्त की कि सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विपक्ष और सरकार के बीच पूर्ण सहमति होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को शहरों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए।
मोस्ट ऑफ आवर मेजर सिटीज, ज्यादातर शहर विशेषकर देश के बड़े शहर जहरीली हवा के साथ जी रहे हैं। लाखों बच्चे फेफड़े से संबंधित बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में उनका भविष्य खत्म हो रहा है। लोग सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सदन के सभी लोगों को इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वायु प्रदूषण लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और उस पर हम सभी को मिलकर काम करना होगा।
कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही देश में वायु गुणवत्ता पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। देश के कई भागों में वायु प्रदूषण को लेकर सांसदों की चिंता के बीच अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में चर्चा कराने के लिए सरकार और विपक्ष के साथ वार्ता की थी। सरकार ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष में देश में फसल उत्पादन में 44% की वृद्धि हुई है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी।
मुझे बताती हूँ, खुशी है कि 2014 के बाद 2024 तक 44% उत्पादन बढ़ा है। 44% जो अपने आप में के रिकॉर्ड, और वो उत्पादन बढ़े इसके लिए नए बीज, नई टेक्नोलॉजी, नई कृषि पद्धति सबका उपयोग हो रहा है।
श्री चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने और समग्र कृषि विकास को गति देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। श्री चौहान ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार किसानों को 2,00,000 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी प्रदान कर रही है और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे किसानों के खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।
अकेले फर्टिलाइजर सब्सिडी लगभग 2,00,000 करोड़ मोदी सरकार दे रही है किसानों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छोटे किसानों के लिए वरदान बन गई है। लगभग 4,09,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में अंतरित किया गया है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मणिपुर के सेनापति जिले में लागू की जा रही 6 विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने जिले की 5 अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासी समुदाय, विशेषकर निजी आदिवासी समुदायों के उत्थान के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, जिनसे उनके जीवन स्तर में और सुधार आएगा। उन्होंने कहा कि मणिपुर के आदिवासियों के लिए सम्मान, सुरक्षा और विकास के अवसर सुनिश्चित करना तथा देश की प्रगति में उनकी अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है।
Today, I am pleased to have inaugurated a number of important projects that will further improve the quality of life of the people of Manipur. These projects in diverse areas of tribal development, agriculture, infrastructure, electricity, drinking water, education, health and sports reflect our commitment to building a more modern and inclusive Manipur.
श्रीमती मुर्मू कल 2 दिवसीय दौरे पर इम्फाल पहुंची। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल का आज लातूर में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। श्री पाटिल ने आज सुबह 6:30 बजे अपने आवास पर अंतिम सांस ली। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में श्री पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों सहित कई प्रमुख पदों पर कार्य किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा सहित कई नेताओं ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि श्री पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल और एक सांसद सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल एक अनुभवी नेता थे जिन्होंने विधायक, सांसद, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने श्री पाटिल को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें एक गरिमामय नेता बताया। लोकसभा में श्री शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने शिवराज पाटिल के निधन की जानकारी दी। श्री बिरला ने कहा कि श्री शिवराज पाटिल महाराष्ट्र की लातूर संसदीय सीट से लगातार 7 बार सांसद रहे।
श्री पाटिल जी ने केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। उन्होंने अनेक संसदीय समितियों के सभापति तथा सदस्य के रूप में भी अपना कार्य किया। उन्होंने पंजाब और राजस्थान राज्यों के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। श्री पाटिल जी 2 कार्यकाल के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे। वे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे। उन्होंने महाराष्ट्र राज्य के मंत्री परिषद के रूप में भी अपनी सेवाएं दी।
श्री बिरला ने बताया कि श्री शिवराज पाटिल के कार्यकाल के समय उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार शुरू किया गया था। लोकसभा और राज्यसभा ने 13 दिसंबर 2001 में संसद हमले के शहीदों को भी श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 2001 में सतर्क सुरक्षा कर्मियों ने अपना अदम्य साहस दिखाते हुए आतंकवादियों की नापाक कोशिशों को विफल कर दिया।
आतंकवादियों ने हमारे लोकतंत्र के पवित्र स्थल तथा भारत की संसद पर हमला किया था। संसद भवन की सुरक्षा में तैनात हमारे वीर सुरक्षा बलों द्वारा इस हमले को सफलतापूर्ण नाकाम कर दिया था। आतंकवादियों के उस हमले को बहादुरी से सामना करते हुए संसद सुरक्षा सेवा, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के 8 सुरक्षा कर्मियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस आतंकवादी हमले में CPWD के 1 कर्मचारी भी शहीद हुए थे।
राज्यसभा में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि 13 दिसंबर 2001 इतिहास में काला दिवस के रूप में दर्ज है, जब भारतीय लोकतंत्र के प्रतीक को आतंकवादियों ने निशाना बनाकर देश की नींव को हिलाने की कोशिश की थी। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर पर दिए न जलाने देने के लिए तमिलनाडु सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान मुद्दा उठाते हुए श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने जानबूझकर अदालत के आदेश को नजरअंदाज किया और दिए जलाने के लिए श्रद्धालुओं पर लाठी चार्ज कराया। श्री ठाकुर के बयान पर आपत्ति करते हुए डीएमके सांसद सदन के बीचों बीच आकर नारेबाजी करने लगे, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही अब जारी है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने ई सिगरेट मामले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से लिखित में शिकायत की है। उन्होंने संसदीय परिसर में तृणमूल कांग्रेस सांसद द्वारा ई सिगरेट पीने का आरोप लगाया है। श्री ठाकुर ने इस घटना की जांच और सदस्य के खिलाफ अनुशासन संबंधी कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। श्री ठाकुर ने लोकसभा में कल ये मुद्दा उठाया था, जिस पर श्री बिरला ने उन्हें लिखित में शिकायत करने को कहा था। श्री बिरला ने कहा कि संसद के किसी सदस्य को ई सिगरेट, धूम्रपान या इस तरह की किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि के लिए छूट या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत क्रूज पर्यटन का नया केंद्र बन रहा है। उन्होंने कहा कि होटलों और रेस्तरां में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है तथा प्रमुख वैश्विक होटल समूह देश में निवेश कर रहे हैं। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने देश में बढ़ते पर्यटन में वंदे भारत रेलगाड़ी की भूमिका का उल्लेख किया।
वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के चालू होने के चलते हुए भी भारत के 140 से ज्यादा हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो डायरेक्ट वंदे भारत ट्रेन कनेक्टिविटी से जुड़े हैं, उसके कारण से वहां भी पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख से जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में वे जॉर्डन जाएंगे। उनकी जॉर्डन यात्रा नरेश अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के निमंत्रण पर हो रही है। निर्वाचन आयोग ने 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है। इनमें तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
निर्वाचन आयोग की संशोधित समय सारणी के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में यह प्रक्रिया अब इस माह की 14 तारीख तक पूरी की जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए समय सीमा को बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में यह अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथियों में भी बदलाव किया गया है। तमिलनाडु और गुजरात में ड्राफ्ट सूची इस माह की 19 तारीख को जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए यह सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी। उत्तर प्रदेश की ड्राफ्ट सूची को अब 31 दिसंबर को जारी किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने केरल के लिए गणना प्रपत्रों को जमा करने की अंतिम तारीख को पहले ही बढ़ाकर 18 दिसंबर कर दिया था। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रपत्र अब 26 दिसंबर तक जमा किए जा सकते हैं और मतदाता सूची के मसौदे का प्रकाशन 31 दिसंबर को होगा।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रीडवा ने बताया कि संशोधित तिथियों के अनुसार अब 26 दिसंबर 2025 तक गणना प्रपत्र भरे जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन नामावलियों का आलेख प्रकाशन अब 31 दिसंबर 2025 को होगा। दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक निर्धारित की गई है। 31 दिसंबर 2025 से 21 फरवरी 2026 तक नोटिस चरण में गणना प्रपत्रों पर निर्णय और दावों एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन अब 28 फरवरी 2026 को किया जाएगा। प्रेमचंद्र गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, गोरखपुर।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामा राजू जिले में आज सुबह हुई बस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस हादसे में करीब 22 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना के समय बस में 2 चालक और 35 यात्री थे।
ये घटना तब हुई जब बस पड़ोसी राज्य तेलंगाना की ओर जा रही थी। स्थानीय लोगों और पुलिस ने घायलों को चिंतुरू के अस्पताल में भर्ती कराया। गंभीर रूप से घायल 5 यात्रियों को भद्राचलम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक अमित बरदार ने बताया कि ये हादसा सुबह करीब 4:30 बजे हुआ। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घटना पर गहरा दुख जताया है। राज्यपाल नजीर ने भी बस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। विजयवाड़ा से हेनरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। घायलों को 50,000 रूपये दिए जाएंगे। एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट में पहले मैच में आज भारत ने संयुक्त अरब अमीरात को 434 रन का लक्ष्य दिया है। वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज की 212 रन की साझेदारी की बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर शानदार 433 रन बनाए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा वो वायु प्रदूषण के मुद्दे पर लोकसभा में चर्चा के लिए तैयार। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा पिछले 10 वर्ष में देश में फसल उत्पादन में 44% की वृद्धि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर के सेनापति जिले में 6 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का लातूर में निधन। और दुबई में एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के सामने जीत के लिए 434 रन का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।